नमस्कार दोस्तों, तोतो चांद की इस किताब में एक नया अध्याय है, तोतो चांद का नाम। जी हाँ, इसमें आपको ये पता चलेगा कि तोतो चांद का नाम कैसे पड़ा। तोतो चांद का असली नाम तो तेत्सुको था, क्योंकि जब वह पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने सोचा था कि शायद उनके लड़का होगा, लेकिन लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई, और उन्होंने नाम पहले से ही सोच रखा था। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी होता ही है ऐसा। तो उन्होंने तो उसका नाम सोच रखा था तेत्सुकी, तेत्सुकी यानी तोरू, मतलब उसका अर्थ होता है कि जो बहुत ही दूर तक चल ले जाए, आवाज़ की तरह स्पष्ट गुंजायमान। इसलिए उन्होंने इसका नाम तेत्सु को तोत्सुकु जोड़कर अब लड़की का नाम बना दिया। अब तोतो चांद को तेत्सुकु चांद सुनाई नहीं देता था, समझ नहीं आता था, और जब कोई उससे पूछता तुम्हारा नाम क्या है, जब वो बोलने लगी तो वो कहती तोतो चांद। लेकिन उसके डैडी यानी पिताजी उसको तोत्सुकी बोलने लगे, और जो माँ और बाकी लोग हैं वो उसको तोतो चांद ही बुलाते हैं। वो अपनी कॉपी पे भी, स्कूल की कॉपीज है, नौ किताबों पर तेत्सुकु लिखती है, लेकिन अपने आप को बताती वो तोतो चांद है। तोतो चांद बड़ी अशांत थी। एक दिन माँ ने कह दिया कि अब तुम रेडियो पर चुटकुले नहीं सुनोगी। तब तोतो चांद नन्ही सी थी। उस समय रेडियो लकड़ी के बनते थे और बड़े सुंदर लगते थे, वे रेक्टेंगुलर होते थे। उसका ऊपरी हिस्सा गोलाई लिए हुआ होता था, सामने का स्पीकर गुलाबी रेशम और नक्काशीदार लकड़ी से मड़ा होता था। दो बटन होते थे जो उसे चलाने में मदद करते थे। जब उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया, उससे भी पहले उसे राकुगो यानी चुटकुलों को अपने कान गुलाबी रेशम से लगाकर सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उसके मजाक बड़े अच्छे लगते थे। और कल से पहले माँ ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। पिछली रात पिताजी के और कृष्णा के कुछ मित्र आए और बैठक में अभ्यास करने लगे। शैलो बजाने वाले सोनेदा, पता नहीं क्या लिखा है, ताची बाना तुम्हारे लिए केले लाए हैं, माँ ने तोतो चांद को कहा। तोतो चांद ने खिल उठी, खुश हो गई। उसने शिष्टता से झुककर ताची बाना के प्रति आभार दर्शाया और माँ से कहा, यह तो साला बड़ा बढ़िया हुआ। इसके बाद जब माँ डैडी ने सुना ये बात, तो उसे उन्हें को ये बात समझ आ गई कि ये जो रेडियो पे सुनती है ऐसे शब्द, ये उन्हीं से उसने लिए हैं। और जब बस करे बढ़िया मजाक करते तो वो ज़ोरों से हंसती। अगर उस समय कोई बड़ा उसे देखता तो ज़रूर यह सोचता, इतनी छोटी लड़की भला मजाक क्या समझती होगी। पर इसमें कोई शंका नहीं है कि बच्चों में एक गहरी विनोदशीलता होती है, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, और वे यह भी जान जाते हैं कि कब किसने कोई मजाक किया है। तो दोस्तों, ये जो वक्तव्य है, इससे ये समझ में आता है कि हमारे बच्चे जो देखते हैं और सुनते हैं वो उन्हीं की भाषा प्रयोग में अक्सर लेकर आते हैं, मतलब कि मॉडलिंग करते हैं। जी हाँ, आपने आजकल ध्यान दिया होगा कि बच्चे जो कार्टून देखते हैं, कोई कोई कार्टून ऐसे हैं जिनकी जो भाषा शैली है वो बड़ी अजीब है। क्या कहते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा उसको सुनते सुनते वो भी वैसा ही बोलने लगता है। तो और घर में भी ये होता है कि हम जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो भी वैसा ही बच्चे भी बोलने लगते हैं, ये हम सब भलीभांति जानते हैं। तो उसकी माँ ने उसको रेडियो सुनने से इसीलिए मना किया क्योंकि वो जो भी भाषा सुन रही थी वो उसी भाषा का प्रयोग वो अब अपनी रोज़ की बोलचाल में लाने लगी थी। पर वो तो बच्ची है, उसे पता ही नहीं था कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। रेल के नए डिब्बे का आगमन। स्कूल में अब रेल के एक नया डिब्बा आने वाला था। मियो चांद ने दोपहर को खाने की छुट्टी में बताया। मियो चांद हेडमास्टर जी की तीसरी बेटी थी और तोतो चांद की कक्षा में ही पढ़ती थी। छह खाली डिब्बे वहां पहले ही कक्षाओं के लिए काम में आते थे। अब एक और आ रहा था। मियो चान ने बताया कि उसमें पुस्तकालय बनेगा, यानी लाइब्रेरी। बच्चों में अत्यधिक उत्सुकता जाग उठी। डिब्बा जाने किस रास्ते से आएगा, किसी ने पूछा। यह चुनौती भरा विषय था। क्षण भर के लिए चुप्पी छा गई। शायद ओबीमाची लाइन की पटरियों से आएगा और सामने के चौराहे से स्कूल की ओर मुड़ जाएगा, किसी ने ऐसा बताया। पर तब तो उसे पटरियों से नीचे उतरना ही पड़ेगा, शायद किसी ठेले पर ही लाया जाएगा। हटो, इतना बड़ा ठेला कहाँ होगा जिस पर वो आ सके, किसी ने तुरंत आपत्ति की। हाँ, शायद नहीं। अब सारे विचार ठप हो गए। बच्चों को इतना तो समझ में आ गया कि किसी ठेले या ट्रक पर डिब्बा नहीं आ सकता। पटरियों पर तोतो चान ने बड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा कि पटरियों पर आएगा। शायद वे स्कूल तक पटरियां बिछाने वाले हों। कहाँ से, किसी ने पूछा। कहाँ से, अरे वहीं से जहाँ कहीं वह डिब्बा अभी है, तोतो चान ने कहा। पर उसे भी लगा कि शायद उसकी बात में दम नहीं है। उसे यह भी तो पता नहीं था कि आखिर डिब्बा कहाँ से आने वाला है। पर इतना तो खैर तय ही था कि स्कूल तक पटरियां बिछाने के लिए राह में पड़ने वाले मकान, दुकान आदि तो कोई तोड़ेगा नहीं। एक के बाद दूसरी संभावना पर निरर्थक चर्चा के बाद बच्चों ने निर्णय किया कि दोपहर बाद घर न जाकर वे स्कूल में ही रेल के डिब्बे के आने का इंतजार करेंगे। तब मियो चान को सबने चुना कि वह अपने पिता हेडमास्टर जी से रात तक स्कूल में रुकने की अनुमति ले ले। काफ़ी समय बाद ये तय हो गया कि रेल का डिब्बा तो देर रात को आने वाला है, सारी रेलगाड़ियां जब चलना बंद हो जाएंगी उसके बाद। जिसे सच में उसे देखना हो उसे घर जाकर अनुमति लेनी होगी, अपने घर वालों से पूछना होगा कि वे चाहें तो रात का खाना खाकर अपने अपने कपड़े चेंज करके बिस्तर लेकर साथ में रात में स्कूल में आ सकते हैं। अरे वाह, बच्चे बड़े खुश हो गए। उन्होंने नए कपड़े लाने को कहा, कंबल लाने को कहा। उस दोपहर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगा। स्कूल के बाद तोतो चान की कक्षा के सभी बच्चे घर की ओर भागे। रास्ते भर यह मनाते रहे कि रात वे एक बार अपने सोने वाले कपड़ों में, पजामों में और कंबलों के साथ एक दूसरे से स्कूल में मिल सकेंगे। तोतो चान जैसे ही घर पहुंची, उसने माँ से कहा, एक नया डिब्बा आ रहा है, हमें नहीं पता कि वह कहाँ से आएगा। पजामा और कंबल, क्या मैं जा सकती हूँ? कौन सी, माँ ऐसी व्याख्या से स्थिति भाग पाती। तोतो चान की माँ को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, पर अपनी बेटी की गंभीर चेहरे से इतना तो वह समझ गई कि कुछ असामान्य घटने वाला है। मानो तोतो चान से कई प्रश्न पूछे और तब जाकर उसे पता चला कि क्या होने वाला। उसने सोचा, तोतो चान को ऐसा अवसर कब मिलेगा, उसे जाने देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि खुद उसे भी रेल का आना देखना अच्छा लगेगा। रात के खाने के बाद माँ ने तोतो चान का पजामा निकाला, कंबल लिया और तोतो चान को खुद स्कूल ले गई। कोई 10-1 बजे बच्चे वहाँ जमा हो गए। इनमें कुछ बड़ी कक्षाओं में भी थे जिन्हें बात की हवा लग गई थी, पता चल गया था। कुछ दूसरी माताएं भी अपने बच्चों के साथ आई हुई थीं। उन्हें देखकर लगता था मानो स्कूल में रुकने की चाहना उनके मन में भी थी, लेकिन बच्चों को हेडमास्टर को सौंपने के बाद वे लौट गई थीं। रेल के डिब्बे के आते ही मैं तुम सबको जगा दूंगा, हेडमास्टर जी ने जब बच्चे संभागार में अपने कंबलों में दुबक गए तब आश्वासन दिया। बच्चे ने सोचा कि बिल्कुल भी सोएंगे नहीं, रेल के डिब्बे के आने की बात ही सोचते रहेंगे। पर दिन भर की उत्तेजना से वे थक चुके थे, अतः वे नींद में हो गए और उनको कब नींद आई उन्हें पता भी नहीं चला। फिर आ गया की आवाज़ आई, कि आवाज़ का शोर गुल सुनते ही सब जाग पड़े और दरवाजे की ओर सभी भागे। सुबह के धुंधले में एक बड़ा सा रेल का डिब्बा दिखने लगा। यह सपने की तरह था, ना आवाज़ ना पटरियाँ। रेल का डिब्बा असल में एक ट्रेलर में रखा था जिससे ओमाची लाइन डिपों का ट्रैक्टर खींच कर ला रहा था। इससे पहले तोतो चान और बाकी बच्चों को यह पता भी न था कि ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ भी होती है जो ठेलों से भी बड़े ट्रेलर को खींच कर ला सकती है। वो बड़े प्रभावित हुए। सुबह की खाली सड़क पर ट्रेलर पर लदा रेल का डिब्बा धीरे धीरे चला आ रहा था। कुछ ही देर में शोरगुल मचने लगा। उन दिनों भारी भरकम क्रेनें तो थीं नहीं जो रेल के डिब्बे को ट्रेलर से उठाकर स्कूल के मैदान में रख देती। जो लोग डिब्बे को लाए थे वह लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों को उसके नीचे फंसा कर ऊपर से उसको उतारने लगे। ध्यान से देखो, हेडमास्टर जी ने कहा, इन्हें लट्ठा कहते हैं। लुटकाने की शक्ति से इतने बड़े रेल के डिब्बे को सरकाया जा सकता है। सब बच्चे गंभीर थे। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, मेहनत में जुटे मजदूर एक ताल में बोलने लगे और सूरज मानो उनकी आवाज़ से ताल मिलाता ऊपर उठने लगा। स्कूल में मौजूद बाकी व छेडबों की तरह इस नए डिब्बे ने भी सैकड़ों यात्रियों का बोझ ढोया था। उसके चक्के हटा दिए गए थे, यात्रा काल पूरा हो चुका था, अब उसे केवल बच्चों की खिलखिलाहट ढोनी थी। सुबह की कुनकुनी धूप में अपने पजामों में खड़े बच्चे बेहद खुश थे, इतने कि वे वहीं खड़े खड़े ऊपर उछल रहे थे, हेडमास्टर जी के गले से लिपट रहे थे और उनके हाथ जोर जोर से हिला रहे थे। बच्चों की इस चौतरफा आक्रमण से हेडमास्टर जी कुछ डगमगाए पर प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान देख बच्चे भी खुश हो गए और उनमें से एक भी यह कभी नहीं भूला कि उस दिन वे कितने खुश थे। तरण ताल तोतोचान के लिए वह अति महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन पहली बार वो किसी तरण ताल में तैरी थी और वह भी बिना कपड़ों की। एक दिन सुबह सुबह हेडमास्टर जी ने कहा, अचानक बड़ी गर्मी हो गई है, मैं सोचता हूँ ताल भरवा दूँ, स्विमिंग पूल भरवा दूँ। वह सभी बच्चे उछलते कूदते चिल्लाए। तोतो चांद और उसकी पहली कक्षा के साथियों का वह कहना और उछलना कूदना दूसरे बच्चों से कहीं अधिक था। तो मोए का स्विमिंग पूल दूसरे तालों की तरह रेक्टेंगल नहीं था, आयतकार ना था। उसका एक सिरा सकरा था मानो कोई नाव हो, पर था वो काफ़ी बड़ा और बढ़िया। रेल की डिब्बों और सभागार के बीच बना हुआ था वह ताल। तोतो चांद व दूसरे बच्चे पाठ के दौरान खिड़की से बाहर ताल की ओर झांकते रहे। जब वह खाली था तब मैदान की बाकी जगहों की तरह उसमें भी सूखी पत्तियां पड़ी हुई थीं। अब उसमें पानी भरने लगा था और वह सचमुच का ताल लगने लगा था। दोपहर खाने की छुट्टी होते ही बच्चे ताल के पास इकट्ठे हो गए। हेडमास्टर जी ने कहा, हम कुछ व्यायाम कर लें फिर तैरेंगे। तैरने के लिए क्या मुझे तैरने की पोशाक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तोतो चांद ने सोचा। जब कभी वह माँ और डैडी के साथ कामाकुरा में तैरने जाती तो तैरने की पोशाक, एक रबर की ट्यूब और ढेरों चीज़ें साथ में होती थी। वह याद करने की कोशिश करने लगी कि कहीं शिक्षिका ने तैरने की पोशाक साथ लाने को तो नहीं कहा था। जैसे हेडमास्टर जी ने उसके मन के भावों को समझ लिया था, वे बोले, तैरने की पोशाक की चिंता छोड़ो, जाओ और सभागार में दिखो। जब तोतो चांद और उसकी कक्षा के दूसरे बच्चे सभागार में पहुंचे तो खुशी से शोर मचाते बड़े बच्चे तैरने की तैयारी में अपने अपने कपड़े उतार चुके थे। एक के बाद एक बिल्कुल नंग धड़ंग बच्चे ताल की ओर दौड़े। तोतो चांद और उसके दोस्त भी कुछ ही देर में पीछे पीछे दौड़े। सभागार की सीढ़ियों पर पहुंचकर उन्होंने दूसरे बच्चों को व्यायाम करते देखा। तोतो चांद और उसके साथी भी सीढ़ियों से नीचे भागे, तैरना सीखने आए थे मियो चांद के बड़े भाई हेडमास्टर जी के बेटे। वह व्यायाम विशेषज्ञ थे। वह तोमोए में नहीं पढ़ाते थे पर वे विश्वविद्यालय तैराकी दल के सदस्य थे। उनका नाम स्कूल के नाम की तरह तोमोए ही था। तोमोए सान ने तैरने की पोशाक पहन रखी थी। व्यायाम कर लेने के बाद जब उन पर ठंडा पानी डाला गया तो वो खुशी से शोरगुल करने लगी और तब वे पानी में कूद पड़े। तोतो चांद तब तक पानी के अंदर नहीं गई जब तक उसने दूसरों को देख कर या पक्का कर लिया कि ताल में खड़ा हुआ जा सकता है। पानी स्नान घर के टब जैसा गर्म तो ना था, पर यह बड़ा ही मनोहक था। बड़े लंबे चौड़े ताल में जहाँ तक हाथ फैलाओ पानी ही पानी था। पतले मोटे लड़के लड़कियाँ सब के सब हंसते खिलखिलाते चीखते चिल्लाते पानी उछालते छपछपाते अपने अपने जन मुहूर्त की पोशाक में यानी नंगे नहा रहे थे। क्या आनंद है, कितनी सुखद अनुभूति है, तो चार ने सोचा। हाँ, उसे यह दुख जरूर था कि रॉकी को यह पता होता कि तैरी की पोशाक के बिना भी तैरा जा सकता है तो वह भी जरूर उसके साथ तैरता। संभव है आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा दोस्तों कि हेडमास्टर जी ने बच्चों को यूं निर्वस्त्र क्यों तैरने को कहा। पर इसका कोई नियम था, अगर तैरने की पोशाक साथ होती और उसे पहनने की बच्चे की इच्छा होती तो वह उसे पहन सकता था। पर आज की तरह अचानक ही तैरने की इच्छा हो और तैरने की पोशाक ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं थी। एक विचार और था, इस अनुमति के पीछे कि लड़के लड़कियों में एक दूसरे के शारीरिक अंतरों को लेकर किसी तरह की जो उत्कंठा होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, एक अलग ही दिमाग में चलता है, वो ना रहे। हेडमास्टर जी ने बच्चों में शरीर को छुपाने के उपक्रम कृत्रिम लगाते थे। वे बच्चों को यह भी सिखाना चाहते थे कि हर शरीर का एक सौंदर्य होता है। और फिर तो मोए में कुछ विकलांग बच्चे भी तो थे, जैसे यासुकी जान जिसे पोलियो था। कुछ ठिकने थे या किसी और तरह से सामान्य। उन्हें लगता था कि कपड़ों का आवरण उतारने के बाद वे अपने शरीर को लेकर अपने मन की कुंठाएं भूल सकेंगे। और हुआ भी यही, पहली झिझक के बाद उन बच्चों की कुंठाएं व लज्जा भी टूटी और धीरे धीरे वे दूसरों के साथ खेलने लगे। कुछ माता पिता इन विचारों से चिंतित हो उठे और अपने बच्चों को तैरने की पोशाकें देते हुए कहते कि उन्हें ज़रूर पहने। पर उनमें से अधिकांश यह जानते भी न थे कि वे पोशाक कितनी कम काम में लाई जाती थी। तोतो जान की तरह जिसने पहले दिन के अनुभव के बाद मान लिया था कि निर्वस्त्र तैरना ही सबसे बढ़िया है, दूसरे भी थे जो कहते थे कि वे पोशाक लाना भूल गए हैं। असल में ज़्यादातर बच्चों को यह विश्वास हो गया था कि सबके साथ मिलकर निर्वस्त्र नहाने का अपना ही आनंद है। हाँ, पर यह ज़रूर याद रखना पड़ता था उन्हें कि जब वे घर लौटे तो उनकी पोशाकें गीली हों। तो मोए के सारे बच्चे बदर की तरह भूरे रंग के हो चले, बंदर की तरह भूरे रंग के हो चले। तैनी की पोशाक से ढके हिस्सों को सफेदी कहीं नहीं रही थी। दोस्तों, ये जो चैप्टर है जिसमें बच्चे स्विमिंग पूल में निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं, इसके पीछे जो हेडमास्टर जी की सोच थी वो यही थी कि हर बच्चा अपने आप को काला, सफ़ेद, गोरा, सुंदर ये सब ना मानकर अपने आप को सबके साथ माने। और जो कुछ विकलांग बच्चे थे जिन्हें किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी थी, वे भी अपने आप को इन बच्चों से भिन्न ना समझें, वो भी अपने आप को इन बच्चों के साथ ही समझें और अपने आप को इस जो उनके अंदर एक हेसिटेशन थी, अपने प्रति एक लज्जा थी, हीन भावना थी, उस हीन भावना को उनके मन से निकालना ही उनका उद्देश्य था इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराकर। तो उम्मीद है दोस्तों ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अब आप अपने इस स्टोरी टेलर को ज़रूर फॉलो करेंगे स्पॉटिफाई पर। शुक्रिया, तब तक नमस्कार।